सप्तभूरिदण्डवत उद्भटरति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य केशवगणी गणनं विभो अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दिकपेन्दीवरं जट्टञ्जाबुदरोचि सान्विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोचलभुजं ध्यायेन् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं इति विज्ञाय राधे तं मे नाम कल हम लोग भजन रहस्य से पंचम ज्ञान के संबंध में पढ़ रहे पंचम है आसक्ति। आसक्ति के सहित भजन करना चाहिए। यदि भजन में आसक्ति नहीं है तो उससे भाव उत्पन्न नहीं होगा और फिर उससे प्रेम नहीं होगा। उसके पहले अनर्थ निवृत्ति अपराध इत्यादि दूर हो जाने चाहिए और फिर रुचि होनी चाहिए। रुचि के बाद में तब परिपक्व होने पर उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी श्रीमद्भागवत के प्रहलाद महाराज उपाख्यान का श्लोक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सख्यात निवेदनम इति पुंसार्थिका विष्णु भक्ति श्रेय नवलक्षणम क्रियेत भगवत तथ्या तन्मन्य अधीत साधारण रूप से हमने कुछ व्याख्या दी थी। भगवान की कथाओं का नाम रूप गुण लीला का श्रवण यह श्रवण कानों से भगवान का नाम रूप लीला कथा परिकर के संबंध में कुछ भी जो स्पर्श होता है कानों से उसको श्रवण कहते हैं। और वैसे ही जब मुख से जिह्वा से जब उच्चरित होता है तो उसको कीर्तन कहते हैं। उसी को मन ही मन में स्मरण करने का नाम स्मरण है। चिंतन करने का नाम स्मरण पाठ श्रवण इत्यादि के संबंध में हमने बतलाया। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और जी गोस्वामी से टीकाओं से कुछ उद्धृत किया गया। हम लोगों के लिए वही सब की जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा इनकी व्याख्या कर देता हूँ। सबसे पहले व्याख्या करने के पहले ये समझना चाहिए कि किसी महाभागवत में ये बतलाया कि कोई नौभा भक्ति करे चाहे सहस्त्र प्रकार की भक्ति करे अथवा सहस्त्र प्रकार की भक्ति है उसको भी करे। सभी अंगों का पालन सभी के लिए संभव पर नहीं, किंतु कोई कोई एक भक्ति को ही लेकर के सिद्धि को प्राप्त होते हैं और कुछ कुछ लोग हैं जो बहु अंगों का एक साथ में मिला करके साधन बढ़े। किंतु उसमें ये देखना है कि जो एक अंग का पालन भी करते हैं उनमें भी बहु अंग किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं, वो केवल एक का नहीं कर सकते, वो रहेगा। जैसे श्रवण कहा गया तो उसमें गुरुकरण से लेकर गुरु से भजन की शिक्षा और फिर भजन की शिक्षा के बाद में भजन करके अनर्थ निवृत्ति और गुरु जी की चरणों की विषम्भ रूप से सेवा करना, ये सब रहेगा कि नहीं रहेगा? ये नहीं हो करके यदि केवल केवल मात्र श्रवण करता है तो उसका श्रवण बेकार हो जाएगा। इसलिए इन नौभा भक्ति में ही सब प्रकार की भक्ति सम्मिलित है ऐसा समझ लेना चाहिए। इसमें नहीं लिखा कि वैष्णवों को श्रद्धा करो, तो फिर वैष्णवों को श्रद्धा नहीं करना है ना, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस नौ में ये सब प्रकार की भक्ति का समावेश है, किंतु एक प्रधान होता है, कोई ना कोई एक प्रधान है। अब जैसे हम लोग लें, बतलाया गया है परीक्षित अभवत श्रवण या परीक्षित भवत, परीक्षित महाराज जी श्रवण के उदाहरण है। अच्छा, ये जो श्रवण परीक्षित महाराज जी का हुआ, उन्होंने गुरुकरण किया होगा कि नहीं? गुरुकरण किया है, सांडिल्य ऋषि या कोई उनके उन्हीं के माध्यम से परीक्षित महाराज जी ने पीछे से ये कृष्ण के प्रपौ बद्रनाथ को यहाँ का सब चीजों का सब जितने भी कृष्ण की लीला स्थलियां हैं उनको प्रकाश, तो वो उनके गुरु हैं। अच्छा, ये किससे सुन रहे हैं? वक्ता कौन है जो इनको सुना रहे हैं? सुखदेव गुरु जिसे, इनका क्या संबंध है? इसलिए दूसरे गुरु से सुनना नहीं चाहिए, ये बात ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? कोई भी दूसरा अपने गुरु के अतिरिक्त तो किसी की बात नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो सिद्धि नहीं होगी, ये बात ठीक है कि गलत है? इसलिए समझो,
तो अखंड करता
कुछ कुछ ऐसा समझते हैं कुछ लोग, बस अपने गुरु जो हैं जिन्होंने दीक्षा दी है इसके अतिरिक्त दूसरों से हमें कोई भी मतलब स्वरूप आए, अच्छा सुनेंगे बुरा सुनेंगे जब। इसलिए यह शास्त्रों में भेद नहीं माना गया अखंड गुरु तत्व होने के नाते। ऐसा भी हो सकता है जो हमारे गुरु जो हैं उनसे भी उन्नत अधिकार के लोग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बात है, वो भी सकते हैं। इनके गुरु से ये सुखदेव गोस्वामी उन्नत थे या नहीं थे और उसको परीक्षित महाराज जी स्वीकार करेंगे कि नहीं, किंतु अपने गुरु का जो स्नेह है वो तो अलौकिक है, वो थोड़ा सा कम भी अधिकार कहो किंतु अपने गुरु का स्नेह उस पर होता है, ये बात ठीक है। किंतु यदि कोई महाभागवत जिनको कोई शिष्य करने इत्यादि से कोई मतलब ही नहीं है, महापुरुष हैं, अवधूत हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है ये कौन है, नहीं, ऐसे महाभागवत भी हो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे ही थे, निर्भूत कसार, निर्भूत कसार है, उनके अंदर में कोई भी कसार नहीं। निवृत्त तरसई उपगीयमाना और सदा स्वप्न मनोभिरामा, ऐसे ये महापुरुष। इसलिए ऐसे महापुरुषों का जो भी संग कहीं मिल जाए तो उनको गुरु के समान स्नेह करना पड़ेगा कि नहीं, और प्रीति, और यदि नहीं करता है तो
महाभागवत
श्रवण के लिए बतलाया गया। इन सबको साधारण आदमी नहीं समझेगा, इतना विचार ही नहीं जाएगा जैसे यहाँ पर किस लिए कैसे क्या उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवत। इसलिए परीक्षित महाराज जी को श्रवण कहा। भक्ति में जब हम साधन कर रहे हैं, अभी साधक भक्त में हैं, तब तक हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ श्रवण है। नाम कीर्तन इत्यादि जितना है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन बंदन दास साक्षात मनिवेदन, उन सबसे श्रेष्ठ है अभिसाधन अवस्था में। जिसका श्रवण ही नहीं हुआ वो कीर्तन करने लग गया है तो क्या होगा, कुछ कीर्तन ही नहीं कर सकता है। पहले कीर्तन कहते हैं किसको, इस विषय को समझना चाहिए। कीर्तन किसको कहते हैं, अब इसको समझने के लिए इसमें कीर्तन शब्द के लिए जो बतलाया गया है, कीर्तन के आदर्श किसको लिया गया है, वैयास की कीर्तन वैयास की, वैयास की माने सुखदेव गोस्वामी, ये कीर्तन के हमारे आदर्श। अब इसके लिए विचार करो, सुखदेव गोस्वामी हारमोनियम बजाना जानते हैं थे कि नहीं, और मृदंग, हारमोनियम मृदंग बजाना जानते थे और सुस्वर से गाना जानते थे कि नहीं, बोला बोलो छिल क्योंकि अभ्यास करे छिले कि नहीं, इतना कुछ ना। यहाँ पर जो हम कीर्तन कर रहे हैं उस कीर्तन को नहीं कह रहे हैं, वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन का एक भेद हो सकता है, कौन कीर्तन वह है भगवान की लीला कथाएं अपने आप जिसके हृदय में उदित हो और वो फिर झरने की भांति अपने आप बहती रहती हैं, विवश हो करके उसे रहा नहीं जाएगा, तब इसको कहते हैं कीर्तन। ये सुखदेव गोस्वामी का कीर्तन सुनने के लिए कितने आदमी वहां पर उपस्थित हुए थे, ऋषि ही को कितना, 88,000 विरक्त सन्यासी साधु महात्मा लोग थे और गृहस्थ लोगों की आराधना उनका कीर्तन सुनने के लिए। कीर्तन किसको कहते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला संबंधी जो कुछ हमारे मुख से उच्चरित होता है वही यथार्थ है। कीर्तन इसको नहीं कहते केवल ताल स्वर से हारमोनियम बाजा और इत्यादि के माध्यम से हो, यदि कोई सुस्वर से, मान लिया कि कोई खूब सुंदर स्वर से राधा रमण हरि गोविंद हो जाएगा या दूसरा सब कर रहा है और खुद अनर्थग्रस्त है और एक आदमी कोई सुस्वर तो नहीं है किंतु हृदय में प्रेम है, अनर्थग्रस्त नहीं है, उसके अंदर में कोई भी अनर्थ अपराध इत्यादि नहीं और वो बहुत ऊंचा उठा हुआ है, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, प्रभुपाद थे, हम लोगों के गुरु जी हैं, रूप सनातन जी थे, वहाँ के और षड् गोस्वामी लोग थे, विष्णुदास चक्रवर्ती ठाकुर अथवा और जितने भी हैं, ये लोग कीर्तनकारी, ऐसे लोगों के मुख से जो कुछ निकलता है वो कीर्तन, वो जगत के पवित्र बनाने वाला होगा। और वो भी क्या होना चाहिए, कीर्तन में एक बात और चाहिए, खूब ध्यान से सुनो, यदि पूर्व पूर्व महाजनों के द्वारा वह विषय पहले कहा गया हो उसी का यदि उसी को कीर्तन कर रहा है तो वो कीर्तन कर, अनर्थग्रस्त व्यक्ति ताल स्वर इत्यादि बांध करके जो छंदों के रूप में वर्णन करता है और अनर्थ दूर नहीं हुआ तो उसके द्वारा कीर्तित किया हुआ कुछ भी है उसका फल नहीं होगा। आजकल हम लोगों में भी ऐसी ऐसी चीजें प्रवेश कर रही हैं और उसको सब लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, खबरदार ऐसा मत करो, अपने महाजनों के द्वारा अपने भाव के अनुरूप अपने रुचि के अनुकूल स्वजातीय वो यदि कीर्तन रहता तो वो ठीक है, अन्यथा जैसे तैसे जो तो बना लिया कविता बांध लिया और बस, प्रसादास और सब प्रकार का दोष उसका भगवान नहीं सुनेंगे और महाजनों के द्वारा जो होगा ना अनुमोदित और जो किया हुआ कीर्तन उसको सुन करके भगवान जल्दी से प्रसन्न होकर खुशी से
शरणागति हुए से जहां तहां प्रार्थना सुनी।
इसलिए जैसे तैसे लोगों का कीर्तन करने से ये सब कीर्तन नहीं कहलाता, किंतु समाज में यही चल रहा है, लोगों के मनोविनोद के लिए हम ऐसा ही कर देते हैं। हाँ सूरदास मीराबाई और सब जैसे हम लोगों के नरोत्तम ठाकुर जी हैं, नरोत्तम ठाकुर जी का हम लोगों के लिए सबसे अच्छा नरोत्तम ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर। कोई भी जगत का व्यक्ति ऐसा कह सकेगा ललिता सखी रुगा किन करी विनोद खरी, ये कोई कह सकता है? राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, कोई भी जगत का कीर्तन से कीर्तन करने वाला जितना भी गला सुंदर ऐसा कोई कीर्तन बांध सकता है? और बांधने पर भी उनमें वो शब्द शक्ति जो है वो नहीं आएगी,
शब्द सामान्य हो जाएगा,
वो साधारण हो जाएगा, शब्द शक्ति उसमें कभी नहीं आएगी। इसलिए जहां तक हो महापुरुषों के द्वारा कीर्तित किया हुआ गान ही नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज का उपाख्यान, ये यदि हम भागवत से लेकर के करते हैं और वक्ता भी उसी उच्च कोटि का हो तो उससे फल होगा, उसकी बातों को लोग सब समझेंगे और हृदय के अंतर तक पहुंच करके उसको उद्भुत न करके उसकी सिद्धि करा दे। अन्यथा भोलक मजीरा महाराज जी हम एक कीर्तन करें, देख रहे हैं सुयोग नहीं मिल रहा, अब झट बीच ही में से वो सब कीर्तनों से हम लोगों का जो भाव है वो परिपक्व नहीं होगा, उससे कोई अधिक कल्याण। इसलिए कीर्तन करने वाले में उस समय भी कितने गायक होंगे किंतु उसको न कर करके ये सुखदेव गोस्वामी को बैया से की कीर्तन क्यों किया, ऐसा कीर्तन करने की तुम लोग चेष्टा करो, इसको कहते हैं कीर्तन, केवल छंदोबद्ध ही कीर्तन नहीं, यथार्थ कीर्तन ये है। ऐसे ही अपने आदर्श से रहो, आचरण वैसे हो, चरित्र ऐसा हो और भगवान का भजन भी ऐसा हो, और तब वो भगवान का चैत्य जो वर्णन करेगा जगत के लिए परम मंगलकारी होगा भाई, तुम लोगों के लिए भी मंगलकारी होगा। अन्यथा दूसरों को वाह कैसा हमने किया, जरा देखिए तो, जरा सुना सुनिए तो, उस कीर्तन से कुछ मिला। हम लोग कभी कभी ऐसे लोगों का सुनते हैं इसलिए कि उनको रुचि होकर के फिर महाजनों के रास्ते पर आए लोग, इसलिए सुजोग देते हैं, उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए नहीं। प्रभुपाद जी ने मायापुर में जब उन्होंने आरंभ किया तो रामचरण
इत्यादि
रामचरण दास बाबा जी, चरण दास बाबा जी और सब लोग उन्होंने कीर्तन स्वागत, किंतु उनके कीर्तन से कोई सुविधा नहीं होगी, प्रभुपाद ने फिर छोड़ दिया। इसलिए भैया से की कीर्तन सुखदेव गोस्वामी का ही कीर्तन, इसलिए कभी भूल में मत रहना, जो सुंदर गला नहीं है मृदंग के साथ में नहीं हो रहा है और हारमोनियम के साथ में नहीं, हारमोनियम तो प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु जी ने, महाप्रभु जी ने किसी ने इसका प्रयोग नहीं किया, इधर के लोग बिना हारमोनियम के गा ही नहीं सकते, उनका ये गला ही नहीं सोचते, इसलिए केवल यही कीर्तन नहीं है। कीर्तन का यथा तात्पर्य है भगवान का नाम रूप गुण लीला शुद्ध चरित्र होकर के अपने आचरण के द्वारा और अनर्थों से निवृत्त रह करके अपने भी करे दूसरों के लिए भी वो करे, अपना भजन वो है ऐसा समझ करके कहा है तो वो कीर्तन। स्मरण वही जब मन के द्वारा उसका इन सब चीजों का स्पर्श होता है, स्मरण के लिए किन को कहा गया, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद स्मरण, प्रहलाद जी हरिनाम कीर्तन करते थे कि नहीं करते थे, गुरु का आदर करते थे कि नहीं, उनके भी गुरु नारद जी थे, इसलिए गुरु जी की शिक्षा इत्यादि और उनका सम्मान इत्यादि भी ये समस्त अंग भी पालन करते, और निषेधात्मक जो दस हैं
वर्जन
वो उसको वर्जन करते, तो ये 20 तो पालन हो गया। तुलसी में जल देते होंगे कि नहीं, मंदिर में आरती देखते होंगे कि नहीं, ये सब करते होंगे, इसलिए एक का मतलब यह नहीं है कि और सबकी उपेक्षा कर देता है। एक प्रधान है और उसके अनुगत जब समय मिलता है तो सब काम उनको करते हैं, इसका ये तात्पर्य। एक प्रधान होना चाहिए। तो वो स्मरण में प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जी क्या स्मरण करते हैं? जो स्मरण करते हैं उसी को बच्चों की सभा में बतलाया। स्मरण करते हैं भगवान का नाम रूप गुण लीला। स्मरण क्या करते हैं? जितने भी जीव हैं हमारे इष्ट देव के वो भजन करते हैं, और इष्ट देव में भी अपने जितने भी जगत के लोग जीव हैं उनको सभी को दर्शन करते हैं। ये महाभागवत है और भगवान की लीला कथाओं का सब अपने अधिकार के अनुरूप में चिंतन करते हैं। उस समय भागवत का प्राकट्य नहीं था, भागवत था, भागवत थे किंतु अप्रकट थे। इसलिए यदि भागवत होता और यदि नारद जी उनको उनका उपदेश दिया होता तो कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते करते हो सकता था कि रासलीला का भी चिंतन करते। ये सब चिंतन है। जितने भी कीर्तन, जितने भी श्रवण, जितने भी श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि हैं, ये सब मूल श्रीमद् भागवत, भागवत के कथाओं का सुनना ये श्रवण है। भगवान की कथाओं का कीर्तन ये सबसे बड़ा कीर्तन है। भगवान की कथाओं का, लीला कथाओं का चिंतन ये सबसे, इसी प्रकार से सब चीजों को जान। जो इसके अतिरिक्त दूसरे चीजों का चिंतन करता है उनका श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब कुछ गड़बड़ी है। हमारे गोस्वामी ने जो कुछ किया है भागवत के आधार पर ही सब काम किया और इसी को लिया। हम आगे अभी जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचारों को हम इसमें करेंगे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी पहले कहते हैं, विप्राधमयो अनु गुरुत्तम नास्ति। उनके जो गुरु थे संडामर प्रहलाद महाराज, वो गुरु नहीं थे, उनमें गुरुत्व नहीं था, क्योंकि भगवान से उनका कोई भी संबंध नहीं था। इसने पूछा हिरण्यकश्यपु ने, प्रहलाद अनुच्यतां तात स्वधीतम किंचित उत्तमम काले न एतावत युष्मान जब अशिक्षत गुरोत्तम। तुमने अपने गुरु से जो कुछ सीखा है, शिक्षा की है, उसमें तुमको जो सबसे अच्छा लगा हो उसको तुम बतलाओ, उसी के लिए ये कह रहे हैं। सुना चुके इन्होंने कभी भी संडामर को अपना गुरु नहीं माना, क्योंकि गुरु थे ही नहीं, अथच उनको लौकिक रीति से गुरु मानना पड़ा। गुरु लौकिक रीति से उनकी अवज्ञा भी कभी नहीं करते थे, मैं तुम्हें गुरु नहीं मानता, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, ये कहते थे कभी? ये भी नहीं कहते। उनको यथाजोग्य सम्मान देते हुए अपना परमार्थिक गुरु, नित्य गुरु मानते थे नारद जी को। उन्होंने विचार किया कि हम, मैं अपने, ये कह रहे हैं पिताजी, जो अपने गुरु से तुमने जो कुछ सुना है उसको बतला, तो हमारे यथार्थ गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी से मैंने जो कुछ सुना है और मुझको जो उसमें से उत्तम जो मुझे प्रतीत हुआ है, मैं उसी को इनको बतला। अपने गुरु संडामर्क की जो साम दाम दंड भेद इत्यादि की जो नीतियां हैं उसके संबंध में हमको कुछ भी नहीं, ये कोई शिक्षा ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहना आरम्भ किया। गुरु नारदार्थ नारद के समीप उन्होंने जो कुछ शिक्षा पाई है, बस केवल केवल उन्हीं में से ही हमको जो अच्छा लगा है, हमको लगी अच्छी क्या बात? भक्ति की बात होती है, ये भक्ति नौ प्रकार की होती है, इसलिए साधारण रूप में इनको बतलाने लगे, कहने लगे। ऐसा सूच करके कहते हैं, श्रवणम पाद सेवनम परिचर्या। पाद सेवनम माने परिचर्या, परिचर्या माने क्या? विशेष रूप से जो सेवा होती है उसको परिचर्या कहते हैं। अर्चनम माने यहां पर पूजा। दास्य माने दासत्व भाव। तो यहां पर श्रवणम कीर्तनम स्मरण, इसके बाद में पाद सेवन। पाद सेवन किसका है?
तदंगी भजनी लक्ष्मी,
लक्ष्मी जी का पाद सेवन। लक्ष्मी जी जैसा पाद सेवन भगवान के चरणों की सेवा परिचर्या करती हैं, उसको समझो उसी तरह से और भी जो दूसरे हैं सेवाएं हैं बड़े प्रेम के साथ में जो सेवा करती हैं वही पाद सेवा। ये तो लक्ष्मी तक का वहां पर वर्णन है, किंतु इससे भी कोई सेवा हो सकती है पद सेवा? कौन सी सेवा हो सकती है? अपनी परम काष्ठा पर गोपियों की जो सेवा है वो सबसे
चरम,
गोपियों की जो चरण सेवा है कृष्ण, और उससे भी कुछ अधिक है, वो क्या है? स्वयं कृष्ण ही, जबकि सेवा कुंज में कृष्ण के राधा जी के चरणों की सेवा जब करने लगते हैं, ये पाद सेवन है उनके लिए, हम लोगों के लिए केवल अभी समझ करके रखना, इसलिए पद सेवन करने से वो है। ऐसे ही यहाँ पर सेवा के लिए भगवत संबंधी सबको आया है, और उपलक्षण में गुरु वैष्णव सबको ले, यहाँ पर सभी कुछ जो कुछ भी कहा गया है भगवत श्रवणम कृष्ण संबंधी, स्मरणम कृष्ण संबंधी, कीर्तनम कृष्ण संबंधी, पाद सेवनम कृष्ण संबंधी, जो कुछ है वहां पर सब कुछ, किंतु उपलक्षण में भक्त और भगवान दोनों को दिया जाए। भगवान तो ही है और उनके नहीं तो आधा हो जाएगा। जहां जहां पर कृष्ण शब्द का अकेला प्रयोग हुआ है उसे समझ लो राधा कृष्ण। सख्यम, सख्य किसका बतलाया गया? अच्छा, अब अर्चनम पृथ्वी पूजनम, पृथ्वी जी का पूजन कैसा है? उन्होंने पूजा की थी, रोज पूजा घंटा बजा करके करते थे ना, घंटा बजा करके हम लोग जैसा पूजा, ऐसा पूजा नहीं, अभी पूजन नहीं आरंभ हुआ, उन्होंने मन ही मन पूजा करके ना? और पूजा करने के बाद में विधिवत ये सब पूजा की और ठाकुर जी स्वयं उनके सामने साक्षात हो गए, एकदम साक्षात होकर के उनकी दी हुई चीजों को उपहारों को, और उनको साथ ही साथ में जो वर है उसको बढ़ गया, ये पूजन का भगवान एकदम प्रसन्न हो जाए। अभी हम लोगों का अर्चन, अभी अर्चन नहीं, अभी हम लोगों का क्या चीज है यार, अभी भगवान के समान जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक उनका अर्चन नहीं होगा, पहले विष्णु बनना पड़ेगा, बिना विष्णु हुए न देवम अदेवम अर्चे, अदेवम जो व्यक्ति है वही जो व्यक्ति है, जो देवता नहीं हुआ है वो देवता की पूजा नहीं कर सकता, इसलिए भगवान के समान भाव होना चाहिए।
विष्णु बनने का तात्पर्य क्या है?
विष्णु तात्पर्य उनका सेवक, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम तस्मात पर परम देवी तदीयानाम, इसलिए पृथ्वी महाराज जी का अर्चन यहाँ पर दिया गया। ऐसा ही अर्चन हो जो भगवान एकदम उपस्थित हो जाए, रोटी दिया उनके लिए, रोटी मल में घी लगाने के पहले ही प्रभु आकर के मांगने लग गए, ऐसा उनको गरम गरम, अब उनसे सहा नहीं जाता, जल्दी से भाई ले आओ, बड़ी जोर से भूख लगी। वो विदुर के घर में जब पहुंचे, विदुरानी के घर में, तो बोले जब मुझको कुछ खिलाओ तो वजह से आप खड़िए थोड़ा सा बैठिए, मैं अभी ले आ रहा हूँ बना करके। अरे बनाने के जो तुम्हारे घर में जो कुछ है
उसी को,
भगवान को भी ठहरा नहीं गया था और उसको भी ठहरा नहीं गया, अंत में एकदम तन्मय होकर के केले के छिलके और उसी को बड़े प्रेम से खाने लगी। विदुर जी आकर के देखा और बिगड़ करके कुछ बोलने वाले थे, इशारा से बंद किया, मैं रोटी और केला का छिलका ये नहीं खाता, मैं तो प्रेम का पारस ग्रहण करता, तो इसलिए प्रेम का पारस मुझे दे रही है, मैं वही इसी को खा रहा हूँ, केले के खाने से हमारा स्वाद बिगड़ जाएगा, अभी बहुत स्वाद अच्छा है, इसलिए ऐसा यदि प्रेम के सहित में हो। उन्होंने कहा कि नानो उपचार जन्म आर्थ बंधो, यदि आर्थ होकर के आर्थ बंधो भगवान है ना, आरती के साथ में प्रेम के साथ में यदि उनका कोई पूजन करता है तो उसको ग्रहण करें, अन्यथा वो ग्रहण नहीं करें, इसलिए पृथ्वी महाराज जी के समान पूजन। पूजनम पृथ्वी पूजनम अक्रूरस सभी बंधनम। वंदना कैसे होनी चाहिए? अक्रूर जैसी। नंदगांव गए कृष्ण को लाने के लिए, कृष्ण और बलदेव को। रास्ते में नंदगांव की सीमा में पहुंचकर देखा कि कृष्ण के चरण कमल, उसमें ध्वज ध्वजा वज्र अंकुश कमल त्रिकोण कलश ये सब देखे। एकदम लूट गए वहां से कूद करके, और अपने कभी अंक में लोट रहन लेकर के, कभी यहां धारण कर सकते हैं कभी इधर, और आंखों आंसुओं से सिक्त करने लगे। बड़े प्रेम के कृष्ण हमें चाचा जी कहेंगे और बलदेव जी जब जाएंगे पहचानेंगे कि नहीं, और एकदम प्रेम से और वंदना कर। श्रीमद् भागवत में वो वंदना दी गई। तो इस तरह से वंदना के लिए अक्रूर जैसा वंदना, हम वंदना करते हैं देखते हैं कि हमारा सूर ठीक चल रहा है कि नहीं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाद्रिते सुरभिरभिपालयन् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वर है, किंतु तुम्हारा हृदय कहाँ है? हम लोग हृदय की तरफ नहीं देखे, आंखों से आंसू आ रहे हैं, और आंसू हृदय पिघल करके हो रहा है ना कि कैसे? इन सबके साथ में ऐसी स्तुति को भगवान कुरु जैसे अभी बनता है अक्रूर कभी मन कपिपति दास से। दास यहां जो कहा गया है उसका अंतिम चुड़ा है कहां? कपिपति। एक मिनट भी अपने प्रभु को छोड़ नहीं सकते, एक मिनट भी नहीं। यदि प्रभु ने कहीं भेजा भी तो उन्हीं का स्मरण चिंतन इत्यादि करते हुए, जो कुछ भी होता है सब प्रभु के प्रीति के लिए ही करते हैं, उनका उद्देश्य। उनको सोने सोना अपना कुछ नहीं है, यदि उनकी सेवा कोई ले ली तो मर जाएंगे, ऐसे ये हैं। उनकी सेवा तो सर्वत्र यही है, जानते हैं ऐसे ये सब समय उनकी चिंता न करते। अक्रूर स्थान कपिपति दास के और सखे, अरे सखा कैसा होना चाहिए? सखा होना चाहिए अर्जुन की भांति, क्योंकि ये जो भक्ति है वैदिक भक्ति है, इसलिए जहां पर ऐश्वर्य परक होगा ऐसे दासों की बात आएगी। यहां पर सिद्धांत सुबल की बात नहीं लिखी गई, यदि सख्य हो तो सिद्धांत और सुबल के समान, वैसा अर्जुन के लिए संभव पर नहीं है, किंतु वैदिक भक्ति का उल्लेख यहां हो रहा है, इसलिए ऐश्वर्य परक जो जितने हैं ये सब का नाम दिया गया। माधुर्य पर किसी भी भक्त का उल्लेख नहीं, इसीलिए नहीं दिया गया। तो इसके लिए सखे ऐसे सखा हैं जो अपनी प्यारी बहन को भी यदि शादी देना है तो किसको दिया? अपना भक्त, अपने से निम्न कोटि का सब प्रकार से, और अपनी प्यारी बहन को अपनी सखा को दिया। कोई नीति की बात आने पर भी कृष्ण ने नीति की भी उपेक्षा करके अर्जुन का साथ दिया। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण को निमंत्रण करने गए, दुर्योधन पहले गया था और कृष्ण को लेने का हक भी उसी का हो गया, किंतु कृष्ण बड़े चतुर और छली भी हैं, भक्तों के साथ में छल नहीं, दूसरों के साथ में छल भी करते, क्योंकि वो भी छल करने के लिए आया है, ठीक ठाक पैठ वो यही, इसलिए वो गया था कृष्ण को स्वार्थ से अपने तरफ में लेने के, और अर्जुन का कोई स्वार्थ नहीं था, कृष्ण की सेवा करने के लिए था, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया। अच्छा तू ले ले, मान लो जे क्या चाहता है। उन्होंने कहा जे आप हमारे तरफ से युद्ध कीजिए, तो कृष्ण ने कहा मैं युद्ध तो करूंगा नहीं, एक तरफ मैं निरस्त्र रहूंगा निहत था, और एक तरफ में हमारी समस्त सेनाएं, कितनी अक्षौणी जादुओं की सेनाएं रहेंगी, उनको ले सकता है दोनों में से, आपके ऊपर में निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं, आप जब लड़ेंगे नहीं तो आपको लेकर के क्या करेंगे, मैं उनको, तो उनको लेकर के भेज दिया। अर्जुन बोलिए प्रभु यदि आप यदि उसके तरफ में हो जाते तो मैं यहीं पर प्राण प्रत्याग करता। कैसे सखा, एक पलंग पर सोए हैं तो उनका कृष्ण का पैर अर्जुन की तरफ में, अर्जुन अपने सिर पर रखे हैं या अपने गोदी में धारण, और अर्जुन का पैर स्वयं अपनी छाती में धारण किए, अर्जुन के पैर को सत्यभामा इत्यादि सब चमर डुला रहे हैं और क्या क्या सेवा कर रहे हैं, कृष्ण से अभिन्न ज्ञान करते, और कृष्ण के चरणों को द्रौपदी और
सुभद्रा
ऐसे ये प्रिय सखा कृष्ण के लिए उनका रथ चढ़ा, क्या नहीं किया, ऐसे यदि सखा हूं तो ये बड़ी भक्ति थी। और माधुर्य के लिए मधुमंगल जी हैं, सिद्धाम जी हैं, सबसे अधिक सुबल जी हैं, अर्जुन जी हैं, लवंग हैं, ये सब गोपियां भी सखा हैं सबसे अधिक। तो सखे अर्जुन सर्वस्व आत्मनिवेदने बलि आभूत, और बलि महाराज ने सर्वस्व उनके चरणों में दिए। हम लोगों का ये देना होता है ना सर्वस्व आत्मनिवेदन गुरु के चरणों में या भगवान के चरणों में, हम लोग ये वहां पर बता, देह मन और आत्मा तीन से संबंधित, उन्होंने तो सब कुछ दे, सर्व क्या सर्वस्व आत्मनिवेदन सर्वस्व दे दिया, किंतु हम लोग शरीर भी दे दे तो भी काम, शरीर के साथ साथ में मन को दे दे तो और भी अच्छा, और उसके साथ साथ में अपना मन अपना सर्वस्व कुछ ये जगत में कहा जाने वाला, इधर देखो भाई, अरे इधर सी इधर इधर देखो कौन इधर देखो उधर देखने की जरूरत। तो सर्वस्व आत्मनिवेदन करने की चेष्टा करनी चाहिए। बलि महाराज, बलि महाराज सब कुछ देना नहीं चाहते थे, किंतु कृष्ण लेना चाहते थे, कुछ कुछ उनकी इच्छा भी थी, नहीं तो उनके लिए ऐसा नहीं करते, दूसरों का क्यों नहीं, रावण का ऐसा क्यों नहीं किया, वो जानते थे जैसे ये प्रहलाद महाराज जी का वंशज है, इसलिए इस पर करुणा करनी है, उसका लेना है, उसके लिए अनर्थ है, वो उनको इंद्र से भी अधिक प्यारे हैं, इंद्र में और बलि महाराज में उन्होंने किसको अधिक स्नेह किया, बलि महाराज को, किंतु साधारण आदमी और पापा नहीं समझता है, इसलिए उनका पहले तीन पग भूमि मांग करके और उसी के बहाने से पहले तो उनका सब कुछ जो कुछ था बाहरी वो सब लिया, अच्छा उनका समस्त राज्य ले लिया, तीन पग में ऊपर से नीचे तक सब कुछ राज्य ले लिया, तो उनका धन लिया होगा कि नहीं, राज्य से क्या बोध होता है, वो हरिश्चंद्र जैसा, हरिश्चंद्र से उन्नत है ये, हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई राज्य तो दिया है, खजाना तो आपको दिया नहीं, अरे बेवकूफ, राज्य दे दिया तो फिर राज्य का रहा कहा तुम्हारे पास, हमारे राज्य में अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्होंने दे दिया, केवल अब तीन चीज को छोड़ देते हैं, तुम भी हमारे हो गए हो किंतु तुम्हारे अभी अकल में नहीं आ रही, तुम तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी भार्या, बस अब तुम हमारे राज्य से निकल करके कहीं दूसरी जगह जाओ, कोई दूसरी जगह था ही नहीं, अंत में काशी में भेज दिया, कहा जब बेच दो तो बेचवाया, तभी तो अजनी बुद्धि आ रही, तभी तो मैं राजा था, मैं बेची गई हुई सभ्या का मैं पति हूं और रोहिताश्व का मैं पिता हूं, अभी भाव नहीं जा, अच्छा ठीक है नहीं जाना, खत्म कर दिया, मार दिया, सांप ने काट लिया, अब जो मरा हुआ लड़का है उसमें भी मेरा रोहिताश्व मर गया है ये भाव गया, तभी अंत में उनको भगवान आए, उनको दर्शन दिया, उनको तत्व का बोध हुआ, तब इस चीज को समझे। बलि महाराज जी के लिए राज्य ले लिया। उन्होंने ये नहीं कहा ये हमारा खजाना खजाना अब ये मेरा है, सब कुछ दे दिया, वो सब देह नहीं लिया है, अब देह को लेना है, राज्य और जो अपना कहा जाने वाला था सब कुछ ले लिया, अब बाकी क्या रह गया, अपना शरीर, उसको भी माफ लिया, पैसे और यहां तक में ऐसे पैर बढ़ा करके उनको भी माफ लिया, उन्होंने उसको दे दिया, अपने शरीर को, मन को, सब कुछ को दे दिया। अब उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं रही। भगवान ने कहा जा अच्छा, अब जैसा मैं कहता हूं वही तो करेगा, तो हाँ लोग करेंगे, क्योंकि आपका हो गया। उन्होंने कहा अच्छा, पाताल लोक में तुम जाओ, वो तुम्हारे लिए रसातल में क्या सुतल तुम जाओ, तुम्हारे लिए वही पर हम नियुक्ति, अब तुम हमारा बन करके रहना, अब तुम अपना नहीं है, वहां जाकर के क्या करेंगे, प्रहलाद महाराज जी को भेज दिया, अपना जाइए इसको रहना सिखलाइए, ये अपने जन भगवान का भक्त कैसे रहता है इसको सिखलाइए, और देखेंगे बात करेंगे ये ठीक है कि नहीं, ऐसे भगवान की करुणा। इसलिए अपना शरीर मन तन सब कुछ अर्पण करना चाहिए। हम क्या करते हैं, गुरु जी से दीक्षा ली, तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले तार करे आत्मसम, से ही देह तार करे चिदानंदमय, से ही देह से कृष्ण चरण, अपराकृत देह से कृष्ण चरण, आत्मसमर्पण करता है। किंतु हम लोग ऐसे दुर्भागा हैं कि अपनी मन की वृत्तियों को भी नहीं दे सकते, हम अपने ढंग से सोचते हैं स्वतंत्र होकर, हमको कहां जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, अपने ढंग से सोचते हैं। महाराज जी हम नवदीप परिक्रमा जाएंगे, जो आत्मसमर्पित व्यक्ति है उसको जाने की कोई भावना हृदय में रहेगी कि नहीं, जब उनके ऊपर में छोड़ दिया। इसलिए हम लोगों ने जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ जो उनसे कहा हो कि हम वहां जाएंगे ये करेंगे, ये समर्पित व्यक्तियों का, वो कहेंगे यहां पर ऐसी सेवा की जरूरत है, वहां पर जाना है बस। जब उनको सब कुछ दे दिया तो अब हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये सब रहेगा कि नहीं, यदि रहा ही तब आत्मसमर्पण ही एकदम पहले ही शरीर का ही नहीं हुआ तो आत्मा की तो बात दूर रहे। इसलिए ये सब पर अच्छी तरह से विचार करो, ये सब को देने का नाम आत्मसमर्पण है। शरीर शरीर संबंधी, मन संबंधी जो कुछ है अब हमारा उस पर अधिकार नहीं। ठाकुर जी जो कुछ हमको भोजन के लिए प्रसाद दे दिया बस वही, और चीज में तुम्हें लोभ करने का ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं, यदि है तो तुम्हारा आत्मसमर्पण। ऐसा ही हम लोगों को आत्मसमर्पण समझो। महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, हम जरा वहां से घूम, गुरु जी ने नहीं कहा जैसे तुमको वहां जाना है मेरी सेवा के लिए, ये नहीं कहा, अपने मतलब से अपने मन से अपनी स्वाधीनता से अपना जो सुखकर और रुचिकर है वो हम करते हैं, तो इसमें आत्मसमर्पण का, यदि ऐसा व्यक्ति हो जाएगा तो फिर वो दूसरी तरफ में कहीं उसको नजर बाद विवाद संवाद ये सब कहीं नहीं छोड़ा, इसलिए सब गड़बड़ियां होती है। अनर्थग्रस्त जीव को अपनी कुछ स्वतंत्रता है, उसका व्यवहार करता है और इसीलिए लड़ाई झगड़ा विवाद फंसा ये सब काम क्रोध लोभ मद। इस श्रवण को श्रवण कहते हैं, इसमें ताल नहीं है स्वर नहीं है किंतु फिर भी ये कीर्तन है, और इसी का सुनना ही सुनना समझ, यदि सुन करके हमारे अंदर में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता और वैसा भाव नहीं आता है तो यह सब सुनना ये बेकार का है, बेकार। इसलिए ऐसा ग्रहण करने की चेष्टा करनी, तब तो आत्मसमर्पण होगा। इसलिए इतना सहज नहीं, गुरुजी हैं और हम दोनों मारपीट करके, गुरुजी हमारा विचार नहीं करेंगे तो हम मठ में नहीं रहेंगे, मतर हो जाओ, वो तो है ही नहीं है मठ में, इसलिए ऐसा विचार करके चलना चाहिए। जो भजन करने वाला आप लोग भी मठ में नहीं, उनसे मठ में ही है, आप लोग भी इस प्रकार से भगवत समर्पण करके भजन करें, फिर कोई भी चिंता की बात नहीं। दुख दूर गेलो, चिंता ना रही, चौदह के आनंद आनंद देखो, और ऐसा भाव नहीं होगा। इसलिए बलि महाराज ने सर्वस्वात्म निवेदने बलि आभूत सब इसको कर, बलि महाराज जी वहां पर पहुंच करके उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मुझे बड़ा खेद है कि मुझे स्वर्ग नहीं मिला, कहा कहीं है। इसलिए भगवान की इच्छा के विपरीत उन्होंने कुछ भी कहीं करने का उल्लेख नहीं है, भगवान ने जैसा कहा यह है। तो पहले शरीर से हो, मन से हो, कर्म से हो, और फिर आत्मा के द्वारा, ऐसा नहीं तब यह दीक्षा हुई, अन्यथा दीक्षा ले लिया और हाथ में वो जो बेल की लकड़ी होती है लेकर के उसी से ही झगड़ा करने लगे, ये दीक्षा था। दीक्षा लिया नहीं जाता है, दीक्षा दिया जाता है, गुरु उसको दीक्षा देते हैं, उसे ग्रहण करना है, उसको ग्रहण करना चाहिए, इसलिए ऐसा होना चाहिए। यहां पर इति पुरुषार्पिता, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? पम पुरुष, पुरुष शब्द से द्वारका में जितनी भी रुक्मिणी इत्यादि रानियां थी, कृष्ण की बड़ी प्यारी थी। रुक्मिणी का क्या अर्थ है? जितनी ही महर्षियां हैं सब उसमें आ गई। ज्यादा लोग कृष्ण के बड़े प्यारे थे, ज्यादा माने यहां पर पुंसा माने जीव मात्र, इति पुंसा,